नमस्कार भारत, तारीख 10 अगस्त दिन शनिवार, मोहनलाल शर्मा का नमस्कार। कश्मीर पर समर्थन जुटाने चीन पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ है चीन।
उन्होंने पाकिस्तान के मौकिफ की मुकम्मल तायद की, इससे रीजन की स्टेबिलिटी उसको खतरा लाहक हो सकता है।
भारत ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के निर्णय के तथ्य को पहचानना चाहिए।
It is time for Pakistan, frankly, to accept the reality and stop interfering in internal affairs of other countries.
विवेचना में सुनिए, जब एक कुमाऊं की महिला बनी पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी।
जब उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA इन इकोनॉमिक्स किया तो वो अपने क्लास में अकेली लड़की थी।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर की नई वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर दुनिया को गुमराह करना बंद करना चाहिए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चीन पहुंचकर अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर पर चीन पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बंदूक नियंत्रण को लेकर सांसदों के बीच गंभीर चर्चा हुई और सभी सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कड़े नियम लागू करने का समर्थन किया। इस बात पर सहमति बनी कि बंदूक खरीदने वाले लोगों के बैकग्राउंड की पहले पड़ताल की जानी चाहिए। पिछले हफ्ते ही अमरीका में दो बड़ी गोलीबारी की घटनाएं हुई थी। ट्रंप ने कहा, हम नहीं चाहते कि मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास बंदूकें हों, ऐसा कौन चाहेगा। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच टेक्सास के अल्पासो शहर में हुई गोलीबारी के संदिग्ध ने माना कि उसके निशाने पर मैक्सिको के लोग थे। इस गोलीबारी में 22 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध बंदूकधारी पैट्रिक ने प्रवासियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा था। इस गोलीबारी में कुछ घंटे बाद ही ओहायो के डेन शहर में भी बड़ी गोलीबारी की घटना हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक अगर पैट्रिक दोषी साबित होते हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी ने कहा है कि देश के उत्तरी हिस्से में स्थित एक सैन्य अड्डे पर पिछले हफ्ते हुए धमाके में उसके 5 कर्मियों की मौत हो गई है। एजेंसी ने बताया कि ये दुर्घटना रॉकेट इंजन के परीक्षण के वक्त हुई। घटना के बाद इलाके में रेडिएशन फैल गई थी, जिसके बाद लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। उत्तर कोरिया ने समुद्र में 2 मिसाइलें दागी हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की तरफ से एक सुंदर पत्र मिला है। हाल के हफ्ते में उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई ये 5वीं मिसाइल है। उत्तर कोरिया कुछ दिन पहले हुए अमरीका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से नाराज है। खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मान रहे इटली के प्रमुख मात्यो साल्विनी ने कहा कि वो इटली के लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ इन बदलावों की मंजूरी देता है तो ठीक, नहीं तो वो फिर भी इन्हें लागू करेंगे।
L'obiettivo è di arrivare al 15% di tasse per tanti italiani.
इटली के प्रमुख नेता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इटली के नागरिकों के लिए टैक्स रेट 15% तक ले आऊं। यह अगली सरकार का पहला उद्देश्य है। यूरोपीय संघ नहीं भी मानता है तो भी हम इसे लागू करवाएंगे। उनकी दक्षिणपंथी पार्टी द लीग ने 5-स्टार पार्टी के साथ अपनी गठबंधन सरकार को गिराने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। मात्यो साल्विनी ने कहा कि वो देश में दोबारा चुनाव कराना चाहते हैं। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर एडन में फिर से लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें कम से कम 6 आम नागरिक मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक ये झड़पें गठबंधन सरकार का समर्थन करने वाले 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच हुई। दक्षिण पूर्वी चीन में आए एक शक्तिशाली तूफान की वजह से जोरदार बारिश हो रही है और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिमा तूफान साल 2014 के बाद देश में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। शनिवार सुबह ये तूफान जिनजियांग प्रांत के तट से टकराया। चीन के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com और रेडियो पर लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। अपने स्तर पर वो भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों पर रोक लगा चुका है, दोनों देशों के बीच व्यापार को निलंबित कर चुका है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस को रोक चुका है और इसके बाद विदेशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। इसी प्रयास में कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को सहयोग और प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और चीन ने माना कि भारत के आक्रामक रुख ने पूरे क्षेत्र के लोगों को खतरे में डाल दिया है।
उन्होंने पाकिस्तान के मौकिफ की मुकम्मल तायीद की। उन्होंने हमसे इत्तफाक किया कि ये यकतरफा है। उन्होंने इत्तफाक किया कि इससे जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटस है उस पर तब्दीली वाकई हुई है। इससे रीजन की स्टेबिलिटी और अमन जो है उसको खतरा लाहक हो सकता है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। उधर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल कहा कि पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर के बारे में गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में भारत के निर्णय के तथ्य को पहचानना चाहिए।
It is time for Pakistan, frankly, to accept the reality and stop interfering in international affairs, internal affairs of other countries.
रवीश कुमार कह रहे थे कि पाकिस्तान नर्वस है और भारत के इस आंतरिक मुद्दे को दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की चिंताजनक तस्वीर पेश करने के लिए एक तरफा कदम उठा रहा है, लेकिन वो हर जगह विफल रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के शब्द। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की बंदी का कल पांचवा दिन था। जम्मू में लगाई गई धारा 144 को हटा दिया गया है और जम्मू की डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आज से अब तक बंद रहे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खोल सकते हैं, लेकिन घाटी में पांचवें दिन भी कर्फ्यू जारी था। शुक्रवार की वजह से जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने कुछ ढील दी, लेकिन घाटी में अभी भी सड़कों पर सन्नाटा है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा,
मुझे लगता है कि जिस तरह जुमे की नमाज पीसफुली हुई है, एक जगह की नमाज में तो लगभग 4,000 लोग नमाज पढ़ के निकले थे, लेकिन कोई इंसिडेंट किसी तरह का नहीं हुआ है। लोग डिसएग्री कर सकते हैं हमसे, लेकिन लोगों में कहीं कोई वायलेंस की, उपद्रव करने की या कोई गलत काम करने की कोई फीलिंग नहीं है। पीपल आर पीसफुल। माननीय प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उससे बहुत कूलिंग इफेक्ट हुआ है।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख का करगिल एक मुस्लिम बहुल इलाका है। करगिल में भी स्थिति तनावपूर्ण है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद करगिल पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी संदीप राय ने उनसे वहां के हालात पूछे।
कल सुबह जब हम लोग श्रीनगर से कारगिल के लिए चले, तब तक सूरत हाल पूरी वादी में वैसे ही थी जैसे सोमवार को, मंगल को, बुधवार को और उसके अगले दिन थी। और कारगिल हम तकरीबन जुमे की नमाज के वक्त पहुंचे। उस वक्त नमाज के बाद यहाँ की जो जामा मस्जिद है वहाँ नमाजी निकल रहे थे। पुलिस का बहुत बड़ा पहरा था। मेन सड़क है जिसको लाल चौक यहाँ कहते हैं, मेन बाजार है, वहाँ भी सुरक्षा कर्मी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। कुछ समय के बाद कुछ युवा वहाँ पर जमा हुए और पुलिस और उनके दरमियान थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। यहाँ पर खास तौर से लोगों को इस बात की शिकायत है, 370 को हटाने का फैसला किया तो यहाँ के लोगों से कोई बातचीत नहीं की। इनका ये भी कहना था कि यहाँ के लोग हमेशा भारतीय फील करते हैं खुद को। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय भी वो आर्मी के साथ थे हिंदुस्तान की, लेकिन जब ये भारत सरकार ने ये फैसला सुनाया तो इनको बहुत बड़ा एक धक्का लगा है और ये जरूर मायूस है इस बात से कि उनको इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। उनकी मांग ये है, जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, लेह लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना है जिसमें कारगिल भी शामिल है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनको लद्दाख की बजाय جموں کشمیر کے ساتھ رکھا جائے، اگر یونین ٹیریٹری ہی کا درجہ دیا جانا ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کو کر دیا جائے۔
کیا اسپتال میں جو ضروری جو سیوائیں ہیں کیا وہ سچارو روپ سے چل پا رہی ہیں؟
دیکھیں، یہاں بھی کشمیر گھاٹی کی طرح پچھلے سوموار سے سارے بازار بند ہیں، ساری دکانیں بند ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں ہی زیادہ رہنا پسند کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب تک اس بات کا ٹھیک سے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے اور اس میں ان کو کیا ملے گا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، عام ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مل نہیں رہی ہیں، اسپتالوں میں بھی لوگ جو ہے جانے میں ان کو دقت ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ابھی عید آنے والی ہے تو شاید یہاں پہ دکانیں کھلیں، بازار کھلیں اور لوگ خریداری کر سکیں تاکہ عید وہ ٹھیک طریقے سے منا سکیں۔
مارکیٹ بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، تو دودھ کی آپورتی کیسے ہو پا رہی ہے؟ روزمرے کے ضروری جو سامان ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہو رہی ہے؟
ضروری سامان جو عام طور سے یہاں پر دستیاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ہاں، کیمسٹ کی ایک دو دکانیں ہمیں کھلی ہوئی ضرور ملی، لیکن یہاں پر اس سے بھی زیادہ جو میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو جس بات سے دقت تھی وہ یہ کہ ان کو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیندری سرکار نے ان کے لیے کیا، اس نئے ری آرگنائزیشن آف دا اسٹیٹ میں کیا رکھا ان کے لیے۔ یہاں ان کے جو ایم پی ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے پارلیمنٹ میں، اس سے یہ لوگ بہت ناخوش ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف ایک محلے میں، ایک چھوٹے سے گلی میں تھوڑا بہت کچھ ہوا ہے، لیکن باقی سب لوگ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ لداخ میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، وہاں پہ بدھسٹ آبادی زیادہ ہے، وہاں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے اس بھارت سرکار کے اس نئے قانون کے خلاف، لیکن کارگل میں ہے۔ کارگل کے لوگ بہت، ان کو ناراضگی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ جیسے کہ کشمیر میں بہت ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ان کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہو، یہاں پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ رہیں، لیکن جو ان کو ایک الگ سے اسپیشل رائٹس دیے گئے تھے وہ ان سے جو چھین لیا گیا ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے۔
کارگل میں زمینی حالات کیسے ہیں بتا رہے تھے بی بی سی سنواداتہ زبیر احمد۔ اور اب آپ کو بتا دیں کہ آج شام انڈیا بول میں کس وشے پر ہوگی بات چیت۔
بی بی سی انڈیا بول۔
جموں کشمیر کا وشیش درجہ ختم کر کے بھارت سرکار نے ایتیہاسک بھول کو سدھارا، یا اس فیصلے سے دکشن ایشیا میں استھرتا اور ہنسا کا نیا دور شروع ہو جائے گا، اس بار انڈیا بول میں چرچا انوچھید 370 پر ہوگی۔ کاریکرم میں حصہ لینے کے لیے شنیوار 10 اگست شام 7:30 بجے مفت فون کریں 1811-7000 یا 1811-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت۔ ادھیکش پد سے راہل گاندھی کے استعفیٰ دینے کے بعد آگے کیا ہوگا، یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے۔ آج کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہونے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بیٹھک میں کانگریس کو نیا ادھیکش مل پائے گا یا پھر انترم ادھیکش ہوگا؟ اسی مسئلے پر ورشٹھ پترکار رشید کدوئی سے بات کی ہمارے سہیوگی ابھیجیت شریواستو نے۔
کانگریس میں جو دو طرح کی رائے دھارنائیں رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی ورشٹھ کو ادھیکش بنا اور دلت سماج کا ہو، جس میں کھڑگے جی کا نام سب سے اوپر ہے، سوشیل کمار شنڈے اور کے اوپر بھی نام کے اوپر وچار چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا کوئی انترم ادھیکش بنایا جائے، انٹرم ادھیکش بنا اور دو تین اپادھیکش جس میں سندھیا جی اور سچن پائلٹ جی اور ملن دیورا اس ٹائپ کے جو یوا نیتا ہیں ان کو اپادھیکش بنایا جائے، یا صرف ایک ادھیکش بنایا جائے اور وہ ادھیکش اپنا پارٹی چلائے۔ تو وہاں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر مکل واسنک بنتے ہیں تو عمر ان کے ساتھ ہے، وہ سچارو روپ سے کام چلائیں گے۔ کسی ورشٹھ کو بنانے میں سمسیا یہ آتی ہے کہ وہ اس طرح سے پارٹی کا کام نہیں کر پائے گا۔
تو کیا جو ان کا یہ وچار ہے راہل گاندھی کا کہ پریوار پہ نربھرتا ختم ہو جائے، پریوار پہ نربھرتا ختم ہو جائے گی یا پھر نربھرتا بنی ہی رہے گی آگے بھی؟
کہ ایک آدرش استھتی یا سدھانت کے روپ میں یہ کہنا کہ کانگریس کی پردھان کی ایک پریوار پہ نربھرتا ختم ہو جائے، وہ ایک دم سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ سالوں سال سے دھرے پہ پارٹی چل رہی ہے، اور کیونکہ راہل گاندھی، پریانکا گاندھی، سونیا گاندھی تینوں جو ہیں سکریہ راجنیتی میں ابھی ہیں۔ سونیا گاندھی لوک سبھا کے سدسیہ ہیں، پریانکا گاندھی مہامنتری मंत्री हैं और ये जो है राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर के रूप में रहेंगे और ये वायनाड से ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसलिए ऐसा कहना कि इन लोगों का जो असर अमल दखल खत्म हो जाएगा मुझे उसमें लेके संदेह है। व्यवहारिक रूप से इन्हीं की बात चलेगी, हाँ कार्यशैली कैसी बनेगी, व्यवस्था बनेगी, इसके तीन हिस्से होंगे। प्रियंका गांधी को कांग्रेस भविष्य के रूप में देखेगी, जो अध्यक्ष होगा वो पार्टी का रूटीन का काम करेगा और राहुल गांधी एक कांग्रेस की विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे।
तो राहुल गांधी का किरदार क्या रह जाएगा?
राहुल गांधी का किरदार ही सबसे दिलचस्प है। इस समय जो कांग्रेस में स्थिति है वो राहुल के रोल को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, वो जो बयान देते हैं उस बयान से चाहे वो धारा 370 के बारे में हो या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उसे कांग्रेस को बड़ी कठिनाइयां और परेशानियां हो जाती हैं। तो ये मामला, लेकिन कांग्रेस जन नेहरू गांधी परिवार से अपना संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते हैं, तो राहुल भूमिका को लेके कांग्रेस में कोई अभी क्लैरिटी नहीं है।
कांग्रेस में क्या होने वाला है, क्या हलचल है, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बता रहे थे। और अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। गुरप्रीत, क्या कह रहे हैं आज अखबार?
जी, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बयानों को जिनके बारे में हमने कार्यक्रम में भी बात की, उन्हें कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं द हिंदू ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न बीजेपी बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में मनाएगी, 50,000 झंडे बांटे जाएंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को और मोटरसाइकिल रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा।
गुरप्रीत, आपने जिक्र किया जिन भारत के बयानों का, तो जनसत्ता की जो सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा, ऐसा भारत का मानना, और ये उसी हवाले से है, रवीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है जो आवाज़ हमने आपको सुनाई थी।
जी, द हिंदू में ही है कि लॉकडाउन के बीच जो स्थानीय लोग हैं वो एक सरकारी ऑफिस है श्रीनगर का, वहाँ पे लोगों को फ़ोन कॉल करने के लिए, अपने जो करीबी लोग हैं उन्हें फ़ोन कॉल करने दिया जा रहा था। स्थानीय लोगों की वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई थी फ़ोन कॉल करने के लिए। और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है कि कश्मीर में खुलेगा IIM का ऑफ कैंपस। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को श्रीनगर में IIM जम्मू का एक ऑफ कैंपस बनाने को मंजूरी दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस अस्थाई कैंपस के लिए करीब 52 करोड़ के फंड को स्वीकृति दी गई है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि वो क्षेत्र में IIM और IIT खोलने का उन्होंने वादा किया था।
सीताराम येचुरी और डी राजा कश्मीर जाना चाहते थे और इन दोनों को वापस गया है, और भारत से सांस्कृतिक आदान प्रदान खत्म करेगा पाकिस्तान, ये जनसत्ता की खबर है।
अरुण जेटली एम्स में भर्ती, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे मिलने। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को खराब स्वास्थ्य के कारण कल एम्स में भर्ती करवाया गया। वो ICU में हैं और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, ये खबर कई अखबारों में है। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर आज फैसला होगा, मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे।
और यहीं पर हम बता दें कि अगर आप bbchindi.com पर जाएंगे तो आप एक खबर पढ़ सकते हैं कि अचानक चर्चा में क्यों आ गए हैं मुकुल वासनिक।
जी, हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर दिख रही है कि 4 राज्यों में बाढ़ से 87 लोगों की मौत, 4 लाख लोग विस्थापित। पिछले कुछ दिनों में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में बरसात हो रही है और बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोग मारे गए हैं। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष ने हर दिन सुनवाई पर आपत्ति जताई, कल
लेकिन अदालत ने ये कहा है कि ये जो सुनवाई है ये रोजाना जारी रहेगी।
खारिज कर दिया आपत्ति।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। और कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना का। हाल ही में दीपा अग्रवाल और तहमीना अजीज अयूब की एक किताब प्रकाशित हुई है द बेगम, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की पत्नी राणा लियाकत अली के जीवन की कहानी को बहुत रोचक अंदाज में बयां किया है। राणा लियाकत अली का जन्म अल्मोड़ा के कुमायूं ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्होंने लियाकत अली की अली से विवाह किया था। राणा लियाकत अली की कहानी बयां कर रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत जमशीद मार्कर कहा करते थे कि जब राणा लियाकत अली किसी कमरे में घुसती थी तो वो अपने आप रोशन हो जाया करता था। एक बार ब्रिज के एक गेम के बाद जब लियाकत अली ने अपने नेता मोहम्मद अली जिना से कहा कि आप अपने अकेलेपन को देखते हुए दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, तो जिना ने तपाक से जवाब दिया था, मुझे दूसरी राणा ला दो, मैं तुरंत शादी कर लूंगा। राणा लियाकत अली का जन्म 13 फरवरी 1905 को अल्मोड़ा में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम था आइरीन रूथ पंत। वो एक कुमायूनी ब्राह्मण परिवार से आती थीं, जिसने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। राणा लियाकत अली की जीवनी द बेगम की सह लेखिका दीपा अग्रवाल बताती हैं।
वो जरा भी दबने वाले लोगों में से नहीं थी। अब आप सोच लीजिए, उनका जन्म 1905 में हुआ था, ऐसे ज़माने में जहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, घर के अंदर कन्फाइंड होती थी। वो किसी चीज़ से नहीं घबराती थी। शी वुड ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव। जब उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए इन इकोनॉमिक्स किया, तो वो अपने क्लास में अकेली लड़की थी। लियाकत अली खान की एक बायोग्राफी है, उसमें ये सब जिक्र है कि कैसे उनके साइकिल के टायर पंक्चर कर देते थे। सोच लीजिए कि 1927-28 में कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थीं लखनऊ में। ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि अच्छा कौन से सब्जेक्ट में एमए किया, उन्होंने इंग्लिश में किया होगा। मैंने कहा नहीं, इकोनॉमिक्स में किया। वो भी अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ थी।
1871 में आयरीन पंत के दादा तारादत्त पंत ने जब ईसाई धर्म अपनाया था तो पूरे कुमाऊं में तहलका मच गया था। उनके समुदाय ने इसका इतना बुरा माना था कि उन्हें घटा श्राद्ध की रीति के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत का ननिहाल भी उसी जगह था जहां आयरीन रूथ पंत का परिवार रहा करता था।
मैं जो अपने ननिहाल वाले मकान में 8-10 साल की उम्र में आज से 60 साल पहले रहता था, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे कि ये नॉर्मन पंत साहब का मकान है, जिनकी बहन पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान साहब के ब्याही गई है। और वो चूंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ वाली बात थी, तो जो इज्जत नॉर्मन पंत साहब की थी वो अपने आप में बड़े लायक रहीन आज भी रहे होंगे, मगर उनको लोग पहचानते इरीन पंत के भाई के तौर पे थे। या कुछ लोगों को याद आता था कि उनके जो वालिद थे, उनके जो दादा परदादा थे, वो अल्मोड़ा के बहुत दकियानू शहर के, वो जो शहर बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिनिकल है, उसके वो बड़े माने जाने वैद्य थे। और ऐसे किसी आदमी ने जब ईसाइयत कबूल की थी तो एक तहलका उस कस्बे में मचा था। तो लोग उनकी बात करते थे कि ये वो कन्वर्ट नहीं थे ईसाइयत में जो अनुसूचित जाति के दलित थे और तब गए थे, तो खानदानी बामन थे, ऊंची नाक बड़ी धोती वाले, जो ईसाई बने थे। तो पहले तो वही धक्का अल्मोड़ा बर्दाश्त करने में उसको दो पीढ़ियां निकल गई। फिर जब उनकी बहन ने फिर एक धर्मांतरण कर लिया और मुसलमान बन गई, इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान के पहले वजीर आजम से शादी कर ली, तो एक खुसूसियत, एक सुरखाब का पर और उन पर जा गया। और उनके बारे में जो कहानियां होती थी वो बड़ी मजेदार थी कि वो भूरे साहब अपने इस तरह के थे कि सिर्फ बीबीसी सुना करते थे। आप सुन के खुश होंगे, अंग्रेजों की तरह टोस्ट बटर का ब्रेकफास्ट करते थे, घूमने अकेले निकलते थे, क्योंकि उन्हें शायद लगता था कि अल्मोड़े के बामन उन्हें बामन नहीं समझेंगे अपना, जाहिर है तीन पीढ़ी से क्रिश्चियन थे।
आयरीन पंत की पढ़ाई पहले लखनऊ के लालबाग स्कूल और फिर मशहूर आईटी कॉलेज में हुई। उनकी मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली से मिलने की भी एक दिलचस्प कहानी है।
बिहार में बाढ़ आई हुई थी और स्टूडेंट्स ने सोचा कि एक हम कुछ कार्यक्रम करें और टिकट बेचें, तो ये गई वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली गई और इत्तेफाक से दरवाज़ा किसने खोला, लियाकत अली खान ने। और उन्होंने उनको टिकट बेचने की कोशिश की, तो पहले तो वो आनाकानी करने लगे क्योंकि कहने लगे लोग तो ऐसी पैसा इकट्ठा करने चले आते हैं, पर उन्होंने किसी तरह उनको कन्विंस किया कि नहीं, हमारा कॉज बिल्कुल जेन्युइन है। और एक के बजाय बोली उनसे कि आप दो टिकट ले लीजिए, आप सिर्फ एक टिकट क्यों ले रहे हैं, अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो मैं आके आपके साथ बैठ जाऊंगी।
फिर लियाकत अली ने न सिर्फ वो टिकट खरीदे बल्कि पहुंचे भी उस प्ले को देखने।
हाँ, पहुंचे थे, हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस था, क्योंकि इनको म्यूजिक का बहुत शौक था, राणा जो है उन्होंने एक गाना भी गाया था, परफॉर्म किया था, पर उस वक्त तक शायद नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनका कोई और कमिटमेंट था, पर बाद में वो जरूर आए अपने एक मित्र के साथ।
यहाँ से जान पहचान का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 16 अप्रैल 1933 में इन दोनों की शादी में परिणित हुआ। लियाकत अली न सिर्फ उनसे उम्र में 10 साल बड़े थे बल्कि शादीशुदा भी थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो मुस्लिम लीग के राइजिंग स्टार थे और मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी।
वो फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे, उनको मैकेनिकल चीज़ों में बहुत रुचि थी। सिगरेट लाइटर्स तो सुनते हैं, उनका इतना बड़ा कलेक्शन था कि वो सूटकेस भर के था। बचपन से उन्होंने संगीत सीखा था, तबला बजाते थे, गाने का शौक भी था। यू कैन से ही वाज अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी।
लियाकत अली ने अपनी पत्नी के लिए दिल्ली के 8 B Hardinge Avenue पर एक बंगला बनवाया और उनके नाम पर उसका नाम रखा गुले राना। पाकिस्तान जाने से पहले लियाकत अली खान ने वो बंगला पाकिस्तान को डोनेट कर दिया। इसे आज पाकिस्तान हाउस के नाम से जाना जाता है और वहां आज भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहते हैं। ये वो जगह है जहां से 1946 के बजट के कागजात सीधे संसद भवन ले जाए गए थे। उस समय लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे।
जिन्ना साहब तो अपना बंगला जो है वो बेच के गए थे डालमिया को, पर लियाकत अली खान ने कहा ये मैं घर पाकिस्तान को डोनेट कर देता हूँ एज एन एम्बेसी, और बेगम राणा से कहा कि हम लोग कुछ नहीं ले जाएंगे, जो चीज़ है यहाँ पर वैसी ही रहेगी। आखिर को बोली कि ये जो छोटा सा कालीन है ये मेरी माँ का था, तो इसको मैं ले जाना चाहूँगी।
अगस्त 1947 में लियाकत अली और राणा लियाकत अली ने अपने दो बेटों अशरफ और अकबर के साथ दिल्ली के वेलिंगटन हवाई अड्डे से एक डकोटा विमान में कराची के लिए उड़ान भरी। पाकिस्तान में लियाकत अली वहां के पहले प्रधानमंत्री बने और राणा फर्स्ट लेडी। उन्हें लियाकत ने अपने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक और महिला मंत्री के रूप में जगह दी। लेकिन अभी 4 साल ही बीते थे कि लियाकत अली खां की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। द बेगम पुस्तक की सहलेखिका तहमीना अजीज अयूब बताती हैं।
शुरू में तो वो बहुत परेशान थी, घबराई भी थोड़ा सा कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि कोई फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी एसेट्स उनके हस्बैंड उनके लिए छोड़ के नहीं गए। बैंक में शायद तकरीबन 300 रुपए थे। अब उन्होंने कहा कि बच्चे भी पालने हैं, उनको पढ़ाना भी है। कुछ ऐसे दोस्त थे फिलैंथ्रोपिस्ट दोस्त जिन्होंने आगे आके उनको थोड़ी सी मदद की, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सोचा कि हाँ इसको वी ओ दिस मच दैट वी हैव टू हेल्प हर बिकॉज शी इज नाउ अ विडो। तो उन्होंने फिर उनको एक स्टाइपेंड एलोकेट कर दिया 2000 रुपए का माहवार। 3 साल के बाद 54 में उनको भेज दिया एज एनवॉय नेदरलैंड्स। तो उससे फिर उनका कुछ सहारा बना, क्योंकि फिर बच्चों की तालीम का भी वो अलाउंस मिल जाता है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसके अलावा उन्होंने चूंकि अफवा ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान वेमेन्स एसोसिएशन स्टार्ट कर दी थी 49 में, तो उसमें वो काफी इन्वॉल्व थी।
राणा लियाकत अली को उनकी सेवाओं के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया गया। उन्हें मादरे पाकिस्तान का खिताब भी मिला। राणा लियाकत अली को पाकिस्तान में महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे तानाशाह जनरल जियाउल हक से भी टक्कर ली।
बहुत ज्यादा रिप्रेसिव किस्म के लॉज ले आए थे औरतों के खिलाफ, और ऐसे लॉज थे कि वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल थे। हुदूद ऑर्डिनेंस इट्स अबाउट मॉरल बिहेवियर। वो चाहते थे कि बस औरतों को किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा वो जो था इस्लाम का 2 women are equal to 1 man, वो उन्होंने रीइंफोर्स किया कि कानून शहादत जो है, यू नो अडल्ट्री की जो लॉ है कि यू हैव टू बी अ विटनेस टू अडल्ट्री एंड ओनली देन इट्स प्रूवन, सो इफ इट्स 2 men इट्स इनफ, बट इफ इट्स 4 women हैव टू से कि हाँ जी हमारी बहन को रेप हुआ था। इट बिकेम सो टफ, दे प्रोटेस्टेड दैट एंड मच मच लेटर इट वाज रिपील्ड। तो फिर जियाउल हक ने चूंकि उनकी उम्र ऐसी थी और उनकी स्टैचर ऐसा था, तो उनको जेल में नहीं डाला, लेकिन बहुत सी औरतों को उस जमाने में डाल दिया जेल में कि तुम लोग क्यों आवाज उठा रहे हो।
30 June 1990 को राणा लियाकत अली ने अंतिम सांस ली। 1947 के बाद पाकिस्तान को अपना घर बनाने वाली राणा लियाकत अली फिर कभी अल्मोड़ा वापस नहीं गई, लेकिन अल्मोड़ा हमेशा उनके सहन में जिंदा रहा।
उनको वहाँ के खास जो खाना होता है पहाड़ का, गहत की दाल होती है और एक चटनी होती है, दाड़िम कहते हैं हम, एक तरह का जंगली अनार होता है, ये सब बहुत याद करती थी। और एक चीज़ मुझे मिली उनके यहाँ उनके पेपर्स के बीच में, जिससे मुझे लगा कि इट वॉज सो पॉइग्नेंट। उन्होंने अपने भाई को बर्थडे पे एक टेलीग्राम भेजा था और उसमें उन्होंने नीचे लिखा था आई मिस अल्मोड़ा।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
जब एक कुमाऊं की महिला बनी पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी। कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर की नई वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर दुनिया को गुमराह करना बंद करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बंदूक नियंत्रण को लेकर सांसदों के बीच गंभीर चर्चा हुई और सभी सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कड़े नियम लागू करने का समर्थन किया। इस बीच टेक्सास के एलपासो में हुई गोलीबारी के संदिग्ध ने माना कि उसके निशाने पर मैक्सिको के नागरिक थे। उत्तर कोरिया ने समुद्र में 2 मिसाइलें दागी हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की तरफ से एक सुंदर पत्र मिला है। रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी ने कहा है कि देश के उत्तरी हिस्से में स्थित एक सैन्य अड्डे पर पिछले हफ्ते हुए धमाके में उसके 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। आज स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें और इंडिया बोल में हिस्सा जरूर लीजिएगा।